परम पूज्य श्री संत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस परंपरा के नवम महापुरुष पीठाधीश्वर रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पद्म पुराण के कथा के प्रसंग में यह पुराण का उद्घोष है कि धरती पर माता और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है और माता और पिता की जो देवत्व वृत्ति है वो देवत्व वृत्ति गुरु के पास जा करके और भी पुष्ट हो जाती है, क्योंकि माता और पिता जो है वात्सल्य की मूर्ति तो है ही, वो गुरु में तीनों चीजें देखने को मिलती है, माता पिता जैसा वत्सल भाव साथ में अनुशासन भी। माता पिता अनुशासन में चूक जाते हैं लेकिन गुरु अनुशासन में चूकता नहीं है, वह जरूरत पड़े तो कड़वी दवा भी देता है, क्योंकि मन को हितकर वचन हो, मन को अच्छी लगे मीठी वाणी हो और अनुशासन भी हो, ये कठिन बात है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, ये दुर्लभ वचन होते हैं ऐसे। लेकिन जो गुरु की कृपा दृष्टि है वह दोनों ही तरह से उपकारी है, मतलब एक गुरु में माता पिता तो है ही है, माता पिता के साथ गुरु भी, गुरुत्व भी है उसमें, लेकिन ये तीनों ही ईश्वर की मूर्ति है ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। एक बार की बात है कि व्यास जी महाराज अपने समस्त शिष्यों के साथ बैठे थे, उस समय पुलस्त जी ने पूछा कि प्रभु ये बतलाइए कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है कि जिसको अकेले कर लिया जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत न पड़े हमको। ऑल इन वन बतलाइए, 2 in 1 नहीं, 3 in 1 नहीं, 4 in 1 नहीं, 5 in 1 नहीं, ऑल इन वन, एके साथे सब सधे, सब साथे सब जाए, तो कुछ आप ऐसा उपाय बतलाइए। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, हम तुमको ऑल इन वन एक धर्म बता रहे हैं जिसमें 5-5 चीजें समाहित है। प्राचीन जमाने में लोग एक एक इंजेक्शन लिया करते थे, अब डॉक्टरों ने इंजेक्शन का निर्माण किया कि 5 इंजेक्शन मिला के 1 इंजेक्शन दे देंगे काम हो जाएगा। वैसे ही एक बात हम आपको बतला रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो, यदि 5ों में से 1 का भी अनुष्ठान आप कर लोगे तो आपके दुख और दर्द जो है दूर हो जाएंगे और यश की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी मिलेगा, ये नहीं कि बंधन रहेगा। कहा कौन सा है प्रभु, जल्दी बताइए, अब लेट मत करिए, इतना अच्छी बात आप बताने वाले हैं। कहा कि देखो, माता पिता की पूजा करो, पूजा, पति की सेवा करो, तीसरी बात, और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखो और मित्रों से द्रोह मत करो, किसी से भी द्रोह मत करो, मित्रों से तो विशेष करके द्रोह मत करो, बस आप सबके प्रिय हो जाओगे। ये सबसे बड़ी औषधि आपको बता रहा हूं, भगवान विष्णु के रूप में सबको देखो। ये 5 महायज्ञ है, ब्राह्मण लोग संध्या तर्पण होम बलि वैश्वदेव और ब्रह्म यज्ञ करते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए ये 5 महायज्ञ है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो इतना वेद पाठ नहीं करते, उनके लिए ये 5 महायज्ञ है, महाव्रत जैसे है। क्योंकि संसार में लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग अपने लिए इतना विधि विधान करते हैं और उसमें हमको प्रवेश नहीं कराते हैं, भाई किसी का कर्म छोटा या बड़ा नहीं है, मानने बस की बात है। जो व्यक्ति कोई मंत्र पाठ के द्वारा प्राप्त करता है, वही प्रसाद कोई झाड़ू लगा करके मंदिर में प्राप्त कर लेता है। दोनों का प्रसाद एक ही जगह बना था और दोनों को प्राप्त वही चीज हो रही है। इसलिए काम किसी का छोटा बड़ा नहीं है। उस छोटे से काम में अपनी बुद्धि को बड़ी लगाओ कि हम बड़ा काम महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसको करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों के लिए यह व्यवस्था बतलाया कि सबको माता पिता को गुरु के समान मानना चाहिए, स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिए और मित्रों से द्रोह मत करो और भगवान विष्णु का भजन करो। मैं मानता हूं ये पांचों पांच सूत्र हमारे यहाँ इस मंदिर में लागू है पूर्णतया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आ रहा हूं यह देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। कहा कि पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञ आप कर लो उसका कोई मतलब नहीं यदि आपने एक माता पिता को नाराज किया तो। कहा कि पिता ही धर्म है और पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये तो अन्याय हो गया महाराज जी, ये पुरुष प्रधान समाज में आप क्या कह रहे हैं? स्त्रियों के साथ तो अन्याय हुआ, आप पिता की बात करते हो। भाई पिता माता से कहां अलग है, क्योंकि पिता में माता की सारी शक्ति समाहित है। पिता के प्रसन्न हो जाने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके सद्गुणों से माता और पिता संतुष्ट रहते हैं उसको गंगा जल से स्नान करने की, गंगा तीर्थ में जाने की उसको जरूरत नहीं है। उसका घर ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है, सारे तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं। जेन माता पिता चरणई सेवितो तेन काशी अयोध्या गता वानवा, जेन रागा दिना न मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा। जिसके माता पिता का चरण सेवा नहीं किया वह काशी जाए चाहे अयोध्या जाए, उसके जाने का कोई फल नहीं है, क्योंकि घर के देवता को असंतुष्ट करके बाहर के देवता को जो पूजने जाता है, घर में तो सुख नहीं ही मिलेगा, बाहर भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसी कथा बतला रहे हैं महाराज कि प्राचीन जमाने में एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता का नाम था नरोत्तम। नरोत्तम नाम इसलिए था जो नरों में उत्तम हो, लोगों में जो उत्तम हो उसे हम नरोत्तम कहते हैं। नरोत्तम जी महाराज बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, बहुत तपस्या उनकी बड़ी चढ़ी थी, लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वो कपड़े फींच करके ऐसे फेंक देते थे तो आकाश में उनके कपड़े सूखते थे, धरती में गिरते नहीं थे उनके तप के प्रभाव से। एक बार की बात है, उनको बड़ा अहंकार हो गया कि अरे हमारा वस्त्र जो है अब आकाश में सूखता है, अब हमारे जैसा कौन हो सकता है। तो एक बार स्नान करके निकले और ऊपर की तरफ ऐसे देखे तो एक पक्षी ने जो है ऊपर से, बगला ने मुंह पर कुछ बीट कर दिया ऊपर से, अहंकार हुआ था तो कह कि ये पक्षी जल के तू भस्म हो जा साला नालायक, हमको पहचानता नहीं तू, ऐसा उन्होंने कहा। जब ऐसा कहा तो तुरंत ही वो पक्षी गिर गया और उसके शरीर में आग लगी और जल के राख हो गया। लेकिन फिर जब वो दूसरे दिन स्नान करके कपड़े को ऊपर डाले तो कपड़ा ऊपर गया या नहीं, धरती पे आके पड़ गया। उनको बड़ा खेद हुआ कि हमने ये क्या कर दिया, ये जो पक्षी है इसको हमने अभिशाप दे करके खराब कर दिया, अपनी तपस्या जो है नष्ट कर दिया। मतलब आप कोई चीज को अर्जन कर रहे हो तो उसे निगेटिव पक्ष में मत डालो, किसी से द्रोह मत करो, अपनी तपस्या को निगेटिव जगह पे मत प्रक्षेपण करो। क्रोध जो है वो तपस्या का हरण कर लेता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां एक शिक्षा आ रही है। बाद में वो चिंता में पड़ गए तो आकाशवाणी हो रही है कि हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा थे, अब तुम्हें मूक चांडाल के पास जाना चाहिए। चांडाल उसे कहते हैं जो श्मशान में रह करके और शव को जलाते हैं। यहां तो पता नहीं है कि नहीं है, मैं माता जी को यहां जलाने गया था लेकिन मुझे मुलाकात नहीं हुई, मैं अग्नि लेकर के ही आया था। मेरी माता जी का यहीं पर वो हुआ था, संस्कार हुआ था, नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो वो घाटों पे होते हैं जो राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ था कर्म, चांडाल कर्म, वो कर इत्यादि लेते हैं, जिसको अग्नि देते हैं उसको। उसमें भी एक बड़ी कथा है, मेरे माता जी के शरीर छोड़ने में गंगा दशहरा और यहाँ से उनको आशीर्वाद लग गया था तो काशी छोड़ करके यहाँ आ गई थी, वो भी अद्भुत कथा ही है। वो रोमांच हो उठता है वो सब जो मेरे साथ घटनाएं घटी, लेकिन यहाँ नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा, ये सब कथाएं पहले हो जाए। उन्होंने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया ना, तू एक मूक चांडाल है, उसके पास जाओ, जब वहां जाओगे तो तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा कैसे रहना चाहिए। यह आकाशवाणी उन्होंने सुना तो सोचा कि अब मूक चांडाल के घर हम कैसे जाएंगे। तब तक एक ब्राह्मण वृद्ध डंडा लेकर के टेकते हुए आया, कहा कि चलो हम पहुंचा देते हैं। उनको मूक चांडाल के घर ले गया। वो चांडाल, मूक मतलब गूंगा, मूंगा बहरा कहते हैं ना, मूक मतलब मूंगा बहरा, या मूक को ग हो गया। हमारे यहाँ वाक को वागीसा कहते हैं, वाणी के इसको वागीसा कहते, दूसरा मूक को मूक हो, मूंगा बहरा कहते हैं, यहाँ जो बोलता नहीं है वो मूक है। वहां उसने देखा कि ये चांडाल जो है अपने वृद्ध माँ बाप के सेवा में लगा हुआ है, उनको गंगा जल पिलाता, उनको तेल मालिश करता, तापने के लिए जाड़े के दिन में आग जलाता था और प्रतिदिन उनके लिए सुगंधित पुष्पों का चयन करके माता पिता पर चढ़ाता था, उनकी पूजा करता था। जब गर्मी की ऋतु आई तो उनके लिए पंखा डुलाता था और उनके दोनों समय पैर दबाता था। जब माता पिता को भोजन करा लेने के पास भोजन करता था। उसकी विशेषता ये थी कि उसके घर में कहीं स्तंभ नहीं थे, खंभे नहीं थे, फिर भी उसका घर ऊपर से छप्पर पे टिका हुआ था। पूछा क्यों ऐसा हुआ तो कहा कि वो माता पिता की सेवक था इसलिए ऐसा उसके यहां हुआ। पंडित जी वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद तुरंत ही कहे कि ए, मैं आया हूं तुम्हारे पास तुमसे धर्म की शिक्षा के लिए। उसने कहा कि आपको धर्म शिक्षा लेनी है तो आप प्रतीक्षा करो, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब सेवा कर लूंगा तब तुम आना यहां, फिर हम तुमको धर्मोपदेश करेंगे। महाराज श्री को गुस्सा बड़ा तेज था, इन्होंने कहा मैं कब से आया हूं, तेरा अतिथि हूं, तुझे खबर नहीं पड़ता? जब आग बबूला हो गए। चंडाल ने बोला क्यों व्यर्थ आप गुस्सा करते हो, मैं वो बगला हूं क्या कि आप देख दोगे तो मैं जल के नीचे गिर जाऊंगा? मैं वो बगला नहीं हूं जो आपने क्रोध से देखा और वो जल के गिर गया। बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये कैसे जान गया। पहले आपकी धोती आकाश में सूखती थी ना, अब नहीं सूखती है ना, यह भी बतलाया। कहा कि ये सब तुम कैसे जानते हो मुझे बताओ। कहा कि ये जो है ना एक पतिव्रता स्त्री है, उसके पास आप दर्शन करने चले जाओ, वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब बताने के लिए आप एक पतिव्रता स्त्री है उसके पास जाओ, व्यास जी महाराज ने कहा कि अब चांडाल के घर तो ब्राह्मण को उपदेश नहीं मिला, उनकी आंखें नहीं खुली, यह क्या कर रहा है। फिर वह पतिव्रता स्त्री को ढूंढने के लिए चल रहे थे, उसी समय में फिर उस वृद्ध को उन्होंने देखा जो वृद्ध उनको वहां पहुंचाया था। वृद्ध ने कहा, क्या बात है, यहां भी तेरा अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ, तो चल मेरे साथ, तुझे पतिव्रता स्त्री के घर ले चलता हूं। पूछा ब्राह्मण देवता ने कि पंडित जी आप ये बताएं कि आप इस चांडाल के घर क्यों वास करते हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। कहा कि देखो, ये अपने धर्म कर्म में रहता है, अपना सेवा का काम माता पिता करता है, इसको जो कर्म मिला है हमारे द्वारा, जिस कुल में जन्म हुआ है, उसको यह सार्थक कर रहा है, और इससे अधिक चाहिए तो तुमको वो पतिव्रता बतला देगी, चलो, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि साफ नहीं हुई है। उसको लेकर के चले। ब्राह्मण ने पूछा, ये बताओ ना कि ये पतिव्रता क्या होता है, ये पतिव्रता हमको पता नहीं चलता, ये पतिव्रता है क्या चीज। उन्होंने बतलाया कि देखो, नदियों में गंगा जी और स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में विष्णु, यही तीन धरती पर श्रेष्ठ हैं। कहा पतिव्रता जो नारी होती है ना, सब कुछ छोड़ करके अपने पति के हित के साधन में लगी रहती है, और अपने पितृकुल का तारण तो करती है पिता के कुल का, और अपने सास ससुर के कुल का भी तारण कर देती है, और अपने नाना के कुल का तारण करती है, ऐसा रामायण में लिखा है। यहां दो ही बातें लिखी है, लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण में तीन बात लिखी है। त्रिलोकम व्याप्य तिष्ठति, जो स्त्री है वो तीन कुलों को पवित्र करती है, एक तो अपने नाना के कुल के, अपने